प्रभु कै सिमरन रित सिद्ध नौ निध, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तद्बुद, प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभु कै सिमरन बिन सह दूजा, प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी, प्रभु कै सिमरन होय सुफला, प्रभु कै सिमरन सुफल फला, से सिमरै जिनाप सिमराए, नानक तां कै लागू पाए।
ओम शांति। सूफी में एक फकीर थे कभी हसन, वो काबा में अपने शिष्यों के साथ घूमते थे। ऐसे ही एक बार अपने शिष्यों के साथ घूमते घूमते जब जा रहे थे तो उनके पैर में काटा चुभा और जैसे ही काटा चुभा खून निकलने लगा और उन्होंने रुककर खुदा को धन्यवाद किया कि तेरी बहुत बहुत कृपा। तो उनके जो शिष्य थे उनको जरा आश्चर्य हुआ, वो कहने लगे कि हम आपके पास आपके साथ चल जो रहे हैं वो। तो उनके शिष्य पूछने लगे कि आपके साथ हम प्रभु की कृपा ढूंढने निकले हैं, तो क्या यही प्रभु की कृपा है कि पाँव में काटा चुभ गया और आप कहते हो बहुत धन्यवाद? तो वो कहता है कि हो सकता था आज के दिन मुझे फांसी भी लग जाती थी। अच्छा है ना कि काटा चुभा, उससे तो बेहतर ही है, और मेरे साथ जो भी हो रहा है ये उसी की कृपा है। आज फांसी भी लग सकती थी या फिर फांसी से भी बदतर कुछ होगा जीवन में, वो भी हो सकता था, वो ना होगा, काटा चुभा ये उसी की कृपा है। दुनिया में असंख्य भक्त हुए, योगी हुए, तपस्वी हुए, वो सारी आत्माएं हुए जिन्होंने भगवान से बहुत प्यार किया और उनके साथ जो कुछ भी हुआ उन्होंने कहा ये जैसे परमात्मा कृपा है। हर चीज के लिए उन्होंने कहा कि ये प्रभु की कृपा है। इस अष्टपदी में भी बहुत सुंदर बात जो कही है, सी सिमरन जिन आप सिमराए, नानक ताके लागे उपाय। प्रभु की कृपा जब तक नहीं होती तब तक उसको याद भी नहीं किया जा सकता। हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम जो याद कर रहे हैं, हम जो सिमरन कर रहे हैं, वो सिमरन, वह याद, वह रिमेम्बरेंस, वह योग, वह तपस्या, वह साधना भी तब होती है, कब? जब वो इंस्पायर करे, जब वो प्रेरणा दे, तब। तो जो कुछ भी है वो सब प्रभु प्रसाद है। तो आज की ये जो अष्टपदी है इसकी शुरुआत है प्रभु के सिमरन रितसिद्ध नवनीत। परमात्मा याद में क्या क्या शक्तियां है इसका वर्णन यहां पर है। रिद्ध सिद्ध नव निध, रिद्धि सिद्धि और नव निधि। रिद्धि अर्थात समृद्धि, सिद्धि अर्थात सिद्धि क्या है? सिद्धि किसे कहेंगे? सुपर नेचुरल, पैरानॉर्मल पावर, साइकिक पावर। संसार में सिद्धि शब्द बहुत आया है। बाबा सिद्धि शब्द का प्रयोग एक दूसरे अर्थ से करते हैं। कौन से अर्थ से? सफलता, विधि से सिद्धि। परंतु संसार में सिद्धि शब्द एक दूसरे अर्थों से किया जाता है। आठ सिद्धियां प्रसिद्ध है। कितनी सिद्धियां है? आठ। पहली, उसका हम आध्यात्मिक अर्थ ले सकते हैं। पहली सिद्धि है अनिमा। अनिमा अर्थात छोटा हो जाना। उसके ही विरुद्ध में है महिमा। अर्थात बड़ा हो जाना। एक है छोटा हो जाना, एक है बड़ा हो जाना। वो वास्तव में होते थे ऐसा बताया है। अगर किसी के पास सिद्धि है तो हनुमान जी कभी छोटे हो रहे तो कभी बड़े हो रहे दिखा रहे हैं। हमारा छोटा होना क्या है? सूक्ष्म हो जाना, बिंदु रूप में स्थित हो जाना, विस्तार को सार में कर लेना और सार को विस्तार में ला लेना, यह है हमारा अनिमा और गरिम महिमा। महिमा अर्थात बड़ा, अनिमा अर्थात छोटा। ये अष्ट शक्तियां है, अष्ट सिद्धियां है। बाबा ने अष्ट शक्तियों की चर्चा की है, अष्ट सिद्धियों की चर्चा इतनी नहीं की, क्योंकि जब जब सिद्धि शब्द आया है बाबा ने कहा है सफलता। दूसरा तीसरा है गरिमा और लघिमा। लघिमा अर्थात हल्का और गरिमा अर्थात भारी। जब चाहो तब हल्का और जब चाहो तब भारी। हल्का कब और भारी कब? हल्का कब हल्का कब बनना है? कुमारों से मुलाकात संडे की मुरली। कुमार अर्थात डबल लाइट, कुमार अर्थात हल्का, कुमार अर्थात व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ संस्कारों का भी बोझ नहीं, तब उड़ती कला का अनुभव कर सकोगे। चित्त के हल्के दशा की दशा जो है उसका नाम है हल्कापन, लघिमा। और गरिमा, गरिमा अर्थात भारीपन। गरिमा कब, भारी कब होना है? अंगद का पैर कोई उठा नहीं पाया, अचल अडोल स्थिति अर्थात वहां भारीपन। अर्थात हिलाने का कोई कितना भी कोशिश करे परंतु हम न हिले, ऐसी चित्त की अचल स्थिति अर्थात गरिमा। उसके बाद में होता है प्राप्ति। प्राप्ति अर्थात पिन, प्राप्ति अर्थात जब चाहो जहां चाहो पहुंच जाओ, जब चाहो जहां चाहो नहीं सॉरी प्राप्ति हां जाने से संबंध है प्राप्ति का। प्राप्ति हम दूसरे अर्थों में प्रयोग करते हैं प्राप्ति शब्द, परंतु प्राप्ति का वास्तविक अर्थ जाने से है। फिर है इशित्व और एक है वचित्व। इशित्व अर्थात मालकियत, सारी चीजों पर जिसकी मालकियत हो। ये अष्ट शक्तियां अष्ट सिद्धियां है, जिसके पास सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसकी चीजों पर मालकियत आ जाती है, इशित्व। और एक होता है वशित्व। वशित्व अर्थात सारी चीजों को वश में करके रख सकता है, वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। वश में कर देना ये वशित्व है। सात और एक है प्रकाम्य। इसमें वो जो चाहे जो चीज की इच्छा करे वो पाले। इन आठ को कहा है अष्ट सिद्धियां। इन अष्ट सिद्धियों में से कल जो अव्यक्त वाणी चली थी बाबा की रिकॉर्डेड मुरली 2/2/2008 की, उसमें बाबा ने एक यात्रा करने को कहा, चार स्थान की यात्रा। कौन कौन से चार स्थान? पहला अनादिकाल, दूसरा आदिकाल, तीसरा मध्यकाल, चौथा अंतिम संगम काल। अनादिकाल में दो बातें, आदिकाल में दो बातें, संगम मध्यकाल में दो बातें, संगम में बहुत सी। सबसे पहले अनादिकाल में जब हम हैं तब हमारी क्या विशेषता है? जैसे आकाश में देखते हो तो कोई कोई सितारा ज्यादा चमकता है, उसी तरह जब तुम परम धाम में थे तो तुम्हारी चमक सबसे ज्यादा थी, पहला। और दूसरा परम धाम में ही दो विशेषताएं है, बाप के नजदीक। ये जो प्रयोग है ये जैसे प्राप्ति वाला प्रयोग है। प्राप्ति अर्थात जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच जाओ। अष्ट सिद्धियों में एक है हल्का हो जाओ, बड़ा हो जाओ, जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच जाओ, जो प्राप्त करना चाहे वो पालो। दूसरा है आदिकाल। आदिकाल में देवताओं जैसी पर्सनैलिटी, देवताएं जैसी रॉयल्टी पूरे कल्प में और किसी भी आत्मा की नहीं होगी। और कितने प्यारे देवता है। दूसरा, तीसरा, मध्यकाल में दो बातें। कौन सी दो बातें? सबके नाम हमको पता नहीं है, नहीं तो पूछना चालू करेंगे। सुरेश भाई, मध्यकाल में दो बातें, पूज्य स्वरूप में, पूज्य स्वरूप में दो बातें, विधि पूर्वक पूजा एक, और दूसरा कल की मुरली जो बाबा ने चलाई, चित्र। ऐसे चित्र और किसी के नहीं हो सकते। अभिनेता, धर्मात्मा, धर्म स्थापक, उनके किसी के भी ऐसे चित्र नहीं हो सकते जैसे तुम्हारे चित्र है। तो एक है चित्र, दूसरा है पूजा। संगम काल में परमात्मा प्यार पालना और पढ़ाई, फर्स्ट रचना हो। तो ये चार काल, चारों कालों का चक्कर लगाओ। ये यात्रा कैसी है? आंतरिक यात्रा है। इसका अभ्यास करते रहो। कल की मुरली में बाबा ने टोटल 8 अलग अलग बातें बताई है। हाथ वाला माइक चालू है तो कौन कौन सी 8 बातें? सबसे पहले बताया क्राउन। बाप दादा क्या देख रहे हैं? ताज। कौन सा ताज है? संपूर्ण प्यूरिटी का ताज है, क्योंकि आप सभी ने, ये परिवार कौन सा है? रॉयल्टी वाला परिवार है, प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाला परिवार है, एक एक आत्मा यहां पर। तो बाप दादा ने क्या देखा? क्राउन को देखा, प्यूरिटी का क्राउन। योग में इन सारी चीजों का प्रयोग करना है। सूक्ष्म वतन में गए, बाबा ने मुझे क्राउन पहनाया, क्योंकि इस जीवन का आधार है संपूर्ण पवित्रता। क्योंकि हरेक ब्राह्मण आत्मा ने क्या अपनाया है? संपूर्ण पवित्रता को अपनाया है। मुरली है 2/2/2008 की। पहला है क्राउन, दूसरा है जर्नी जो अभी बताई, यात्रा, चक्कर लगाओ बाबा ने कहा, अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल। पांचवा भी है हमारा अंतिम संपूर्ण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, जिसकी चर्चा कल बाबा ने नहीं की, पर ये 5 स्वरूप है। ये पांचों ही स्वरूप बहुत प्योर है, बहुत पावरफुल है। वो जो परम धाम है यहां पर, ये शिव बाबा, ये मैं, सबसे ज्यादा लाइट मेरी है, ये समान, सबसे समीप मैं हूं। फिर देवता स्वरूप, देव लोक में आ जाना, स्वयं को वहां देखना, हर सीन को क्रिएट करना कंप्लीट, देव संस्कृति, देव सभा, पुष्पक विमान, फूल फल, पहाड़ी, झरने, पंछी, डिजाइन, वस्त्र, क्या क्या है वहां पर, उसमें एंट्री करना, अमृत वेला, उसका अनुभव करना, उस स्वरूप का। जैसे कि ये सतयुग है, ये त्रेता है, पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवा, आठवा, एक एक जन्म का अनुभव, यहां के जन्मों का अनुभव, ये अभ्यास। तो फिर पूज्य स्वरूप का अनुभव, हम कौन है? पूज्य। कौन आ रहे हैं? भगत आ रहे हैं। क्या करेंगे भक्तों को? वैभव भाई क्या करेंगे? कौन सा वरदान देंगे भक्तों को? भक्तों को कौन सा वरदान देंगे? अच्छी कौन सी मनोकामना? वो कुछ के कुछ लेके आ सकते हैं। भक्तों की मनोकामना पूर्ण, बहुत रिस्की बिजनेस है ये तो। वो तो क्या लेके आएगा पता ही नहीं। हाँ, शुद्ध मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और वरदान कौन सा देंगे ये पूछ रहे हैं हम। प्रकाश भाई वरदान, सद्बुद्धि भव। और कौन सा वरदान देंगे भक्तों को? योगी भव, पवित्र भव, ये वरदान दे दो। बढ़िया वरदान है, चाहे कैसा भी हो, योगी बना दो उसको तो काम पूरा, सब आ जाएगा उसमें। तो देखना है, मंदिर में हम है, भगत आ रहे, ढोल बजा रहे, गाने गा रहे, आरती कर रहे, कीर्तन कर रहे, कोई पूजा कर रहा है, कोई बना रहा है, फूल की माला बना रहा है, कोई मोदक बना रहा है, कोई प्रदक्षिणा कर रहा है, और कोई उलाने दे रहा है, कोई कंप्लेन कर रहा है, कोई धन्यवाद दे रहा है, कोई वहां पे बिजनेस चालू कर दिया किसी ने कोई पुजारी बाहर बैठा है और आने नहीं दे रहा है, जो सच्चे भगत है, कोई शूद्र है, उसको बिल्कुल पैर नहीं रखने देता है, कोई वहां पर भी किसी ने बिजनेस चालू किया अपना चप्पल का, सब हो रहा है, साक्षी होकर देखना है। ये मंदिर है, मैं पूज्य स्वरूप, अपने मंदिर में क्या क्या हो रहा है वो देखना, तो पूज्य स्वरूप। फिर है संगम, पढ़ाई पालना और प्यार, प्यार पढ़ाई पालना, फर्स्ट रचना हो, वर्षे के अधिकारी हो, संपूर्ण अधिकार तुम्हें प्राप्त है, जितना चाहे, जितना प्राप्ति स्वरूप बनना हो, जितना अधिकार लेना हो ले सकते हो, संडे की अव्यक्त वाणी सुबह की, जितना लेना चाहे ले सकते हो, परंतु नंबरवार बन जाते हो, उसके फिर कारण बताया आगे, सावधानी कम है और बुद्धि में स्वच्छता कम है, इसलिए। तो तीसरा स्वरूप, चौथा, फिर आ जाओ यात्रा बताई, फिर एक बताया मिरर, क्या करना है, तुम्हारे पास एक आईना होना चाहिए, आईने में देखो, क्या माताओं के पास आईना है, कुमारियों के पास आईना है, बांडवों के पास है, भाइयों के पास है, टीचर्स के पास है, सबके नाम गिनाए बाबा ने, मिरर आईना, इसमें परसेंटेज चेक करो कि मेरी प्यूरिटी की परसेंटेज क्या है, कितनी परसेंटेज है प्यूरिटी की, निकालना आता है परसेंटेज, बाबा ने पूछा, तो मिरर कौन सा है, अब ये बताओ कौन सा आईना जिसमें देखे और पता चले हाँ मेरी प्यूरिटी की परसेंटेज कम दिखाई दे रही है, वो कौन सा आईना है जिसमें देखो ये यहां ठीक नहीं लग रहा है, बाबा यहां ठीक है, यहां कुछ यहां यहां ठीक करना है, कौन सा आईना है, हाँ संकल्प का आईना, ब्रह्मा बाबा का किसने बोला जीवन, ये सबसे बड़ा आईना है, उसकी जीवनचर्या, उसकी दिनचर्या, रात्रिचर्या, संकल्पचर्या, संस्कारचर्या, व्यवहारचर्या, उसकी चलन, वो संपूर्ण जीवन ही आईना है। एक दूसरा है मुरली, ज्ञान, ज्ञान दर्पण, मुखड़ा देख ले प्राणी, उस ज्ञान में देखो कि ये जो बाबा ने कहा है ये मैं कितना फॉलो कर रहा हूं, तो ये है मिरर, तो मिरर में देखना है, ठीक है। उसके बाद में चौथा, ज्ञान की परख, साइंस, प्यूरिटी की परख, तीन कौन कौन सी, दृष्टि, वृत्ति और कृति, अब तीनों में क्या क्या है कौन बताएगा, दृष्टि में आत्मिक दृष्टि, दूसरों को आत्मा देखना, वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना, कृति में सुख देना, सुख लेना, दुख नहीं देना, दुख नहीं देना, और फोकस किस पे किया, दुख लेने में, बच्चे क्या करते हैं दुख ले लेते हैं, कोई इंसल्ट करता है तो दुख कैसी चीज है, खराब चीज है, कभी कभी ले लेते हैं, दुख खराब चीज है, किचड़ा है फिर भी ले लेते हैं और फिर परेशान होते हैं, दुख की फीलिंग आ जाती है, मतलब दुखी होना अर्थात अपवित्रता, ये किसकी परिभाषा बता रहे बाबा, साइंस ऑफ प्यूरिटी, परख है प्यूरिटी की, दुखी हो रहा है व्यक्ति अर्थात अपवित्रता, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या बताई, बीमारी बताई ना, एक दुखी होना बीमारी है, ट्रीटमेंट क्या है, मैं सहनशीलता की देवी हूं, मैं सहनशीलता का देव हूं, ये ट्रीटमेंट है, जहां जहां मैं है, जैसे तुम मेरा के आगे क्या लगाते हो बाबा, वैसे मैं के आगे क्या लगा दो, अब मैं को किससे जोड़ो, समान से जोड़ दो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये समान है, मैं तख्त नक्षिन आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, तो एक एक समान को मैं से जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगी अच्छी, जैसे मेरा के आगे बाबा के आगे मेरा जोड़ा है, वैसे इसके आगे ये जोड़ दो, तो दुख लेना, ये बीमारी है, एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे कोई स्पंज होता है ना, स्पंज को पानी में रखो तो खींच लेता है पानी को, वैसे व्यक्ति भी दुख को खींच लेता है, दुख को एब्जॉर्ब कर लेता है। दुख से एक अज्ञात सा प्यार भी है, उसको अच्छा लगता है। कोई दुख नहीं देता तो बेचैनी होती है, क्यों नहीं दिया आज किसी ने, और जैसे ही दिया और झपटे उसके ऊपर और रात भर चिंतन उसका, इसने ऐसा क्यों कहा, क्या, क्यों, कैसे। यह है मायावी, माया की मृग माया, माया का सुनहरी सुनहरा मृग। ये क्या है, सुनहरा मृग, संडे की मुरली, साइंस ऑफ प्यूरिटी, ये तीन साइंस। फिफ्थ, टू वर्ड्स, दो शब्द याद रखो, कौन कौन से, अचानक और एवर रेडी। इस पर हर एक को एक लिस्ट निकालनी है एज अ होमवर्क, अचानक क्या क्या हो सकता है लिख के रखो, अचानक क्या क्या हो सकता है और मैं कितना तैयार हूं। आज सब कुछ है, कल कुछ भी नहीं रहेगा, आज यहां है कल कहीं और रहेंगे। आज सब कुछ ठीक लग रहा है, अचानक मृत्यु की खबर, अचानक किसी के बीमारी की खबर, कितना मुझे अचल रख सकती है, या फिर हिल जाऊंगा, गिर जाऊंगा, डर जाऊंगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सारे प्रश्न आ जाए। अचानक और एवर रेडी अपने योगी सहज योगी जीवन में, दिन में बाबा ने कहा ये दो शब्द याद रखो। सिक्स्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट करो, कौन सा प्रयोग करो, शांति की शक्ति का प्रयोग करो, पहले स्वयं के ऊपर फिर दूसरे के ऊपर। हलचल में लाने वाली परिस्थिति है, मैं उस परिस्थिति में कितना चलूं, प्रयोग करो इसका, तो एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद में है सातवां, किरणें, किरणों का क्या करो, सकाश दो, सुख और शांति की किरणें फैलाओ। कई बार कल बोला मुरली में, वहीं पर ही दो तीन बार बोला बाबा ने, सकाश फैलाओ, सकाश फैलाओ आत्माओं को। पर इसके लिए एक चीज चाहिए, कौन बताएगा माताओं में से, सकाश फैलाने के लिए, भाई नहीं, माता है या बहन है, हाँ, उसके लिए एक चीज चाहिए, कौन सी, सूर्य का तो उदाहरण दिया है, जैसे वो सूर्य होता है, पानी को सुखाता है, पानी को बरसाता भी है, जैसे वो सूर्य होता है, दिन करता है रात करता है, ये एक उदाहरण दिया। एक दूसरा भी उदाहरण दिया, जैसे स्थापना के आदिकाल में क्या हुआ था, बाप दादा ने साक्षात्कार कराया था, सुख और शांति का घर बैठे लोगों को अनुभव कराया था, आ जाओ, ये तो उदाहरण है। पर इसके लिए चाहिए क्या, एकाग्रता, जब चाहो जहां चाहो जब तक चाहो मन को एकाग्र कर सको, ये चाहिए। उसके सिवा सकाश देने की सेवा नहीं हो सकती, सकाश देने की सेवा सबसे पावरफुल सेवा है, जहां व्यक्ति एक ही जगह बैठा हुआ है और सारे विश्व में वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, तो बुद्धि कितनी एकाग्र चाहिए। तो एकाग्रता, एक्सपेरिमेंट के यहां पे भी एक उदाहरण दिया बाबा ने, साइंस का, क्या उदाहरण दिया, साइंस का उदाहरण है, हाँ, साइंस वाले रिसर्च करते हैं, नए नए प्रयोग करते रहते हैं, वैसे तुमको भी नए नए प्रयोग करने हर दिन। आज सारे दिन भर कितना प्रयोग किया, बैठे थे, खड़े थे, किसी के लिए इंतजार कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वहां इधर उधर देख रहे थे, यहां से नीचे जा रहे थे शांतिवन, गाड़ी में बैठे थे, क्या किया 45 मिनट्स, व्यर्थ का सोचा या कुछ और सोचा, चल रहे थे, यहां से वहां जाना था, जाते समय कौन सा प्रयोग किया, क्या कोई प्रयोग करते करते गए या ऐसे ही चला गया समय, या चिंतन करते करते गए, प्रयोग करते करते गए, या कोई सामान ले लिया, फरिश्ता हूं और फिर किरणें फैला रहा हूं, क्या ढूंढना है। तो सातवां है किरणें और आठवां है पार्टियों से मुलाकात, नवीनता, प्राइज, आठवां है प्राइज, प्राइज लो, स्व परिवर्तन और किसकी प्राइज, सेवा में नवीनता की प्राइज लो। और क्या नया करता कर सकते हैं उसके बारे में सोचना। अब तक जो किया पुरुषार्थ में, ज्ञान में, योग में, धारणा में, जीवन में, अब और क्या किया जा सकता, कुछ रहा हुआ है क्या, यह प्रश्न आना चाहिए। तो ये इन शॉर्ट कल जो अव्यक्तवाणी चली उसके बारे में कुछ बातें थी। प्रभ के सिमरन रिद्धसिद्ध नवनिध, रिद्धि मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, नव निधियां मिलेगी। निधि अर्थात खजाने। नव निधियां भक्ति मार्ग में अपनी रीति से बहुत सारी अलग अलग बताई है। कुछ ऐसी निधि कि जो एक पीढ़ी चले, कुछ ऐसी निधि जो सात पीढ़ी चले, कुछ ऐसी निधि जिससे सत्यानाश हो जाए, कुछ ऐसी निधि जिससे, अलग अलग निधि के अगर अलग अलग नाम है, मकर निधि, मच्छ निधि, अलग अलग कुछ 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 नाम दिए हुए है। निधि में भी प्रकार है, कुछ कुछ निधि है जो भोग विलास में खर्च हो जाए, कुछ कुछ निधि जिससे कल्याण हो। निधि अर्थात खजाने। बाबा ने हमें भी ऐसे नौ खजाने दिए हैं, आठ शक्तियां दी है, और रिद्धि अर्थात समृद्धि अर्थात ज्ञान का अथाह धन दिया हुआ है। कौन कौन से खजाने दिए हैं? नौ। संकल्प, तन, संकल्प, तन, तन मन धन नहीं, ज्ञान सबसे पहला खजाना, दूसरा गुण, तीसरा शक्ति, चौथा समय या फिर श्वास, एक साथ, अलग अलग नहीं है दोनों, समय श्वास एक ही ले लो, भले कुछ कुछ मुरलियों में दो दो अलग गिनाए हैं बाबा ने, पर है एक ही चीज। पांचवा संकल्प का खजाना। अगला पांच, छठवा खुशी का खजाना, सातवा पवित्रता का खजाना, ज्ञान गुण शक्तियों में गुण आ गया। अगला दुआओं का खजाना, और नौवा पुण्य कर्म का खजाना। ऐसे ये नौ खजाने हैं। वैसे खजाने अनगिनत है, पर मुख्य ये नौ खजाने हैं। कब मिलेंगे ये सारे? प्रभ के सिमरन रितसित नवनीत, उसकी याद से। याद करो तो ये सारे खजाने आ जाएंगे, खुशी आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, सब आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, गुण आ जाएंगे, शक्ति आ जाएगी, समय, समय का क्या करना है वो सदुपयोग करने का हुनर आ जाएगा, दुआएं मिल जाएगी, पुण्य कर्म होंगे, पाप कर्म नहीं हो सकते, याद में किए हुए कर्म, देही अभिमानी, आज बोला सुबह, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, ज्ञान मिलेगा, ध्यान होगा, तत् बुद्ध, तत्व ज्ञान, जो परम तत्व है ज्ञान का, जो बुद्धि से परे लगता है, ऐसा लगता है ये समझ से परे है, कैसे समझेंगे इसको। ज्ञान की कुछ बातें हैं वो अशरीरी अवस्था में ही समझी जा सकती है, चाहे कितना भी माथा मारो वैसे समझ में नहीं आती, कितना भी क्लास करो या कराओ या सुनो या सुनाओ, कुछ बातें ऐसी है जो आत्मा को जैसे ही देह से अलग होगी उसी अवस्था में समझ में आएगी, योग में, तपस्या में, इसके लिए अशरीरी अवस्था का इतना महत्व है। प्रभ के सिमरन जब तप पूजा, एक सिमरन में जब समाया हुआ है, तप समाया हुआ है, पूजा समाई हुई है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान में, इस योग में संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। जब भी कौन सा है ये? जब के भी बहुत सारे प्रकार है, असंख्य प्रकार है जब के, भक्ति में अखंड जप, अजपा जप, अचल जप, कोई मुख वाला जप, अलग 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 प्रकार दिए हुए हैं, मंत्र जप, बहुत सारे प्रकार है। हमारा कौन सा है? अजपा, चैंट, जब को चैंट कहा जाता है, ये जो चैंट है साउंडलेस चैंट है। एक होता है जब मुख का, एक होता है मन का, और तीसरा एक होता है जो इसकी शुरुआत में हमने कहा था, सिमर सिमर सुख पाओ, तीन बार है। क्यों? एक है मुख का, दूसरा है मन का, और तीसरा और एक जप है, वो कौन सा? वो अपने आप होते रहता है, उसको करने की जरूरत ही नहीं, हम साक्षी होके देख रहे हो और अपने आप हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। वह जप अपने आप जो होते रहे, वह जप मतलब उसकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है, इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अपने आप निकल रहा है वो। ऐसे महाराष्ट्र में ऐसे कुछ संत हुए हैं कि जिनको मंदिर में आने नहीं दिया, जैसे चोखा मेला करके एक संत है, वो शूद्र जाति का था, उसको मंदिर में आने नहीं देते थे, वो भी मंदिर के बाहर ही। और जब उसकी मृत्यु हुई और उसका जो अर्थी, उन हड्डियों में से विट्ठल 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 निकल रहा है वो कौन सा जप है? ऐसी बातें हैं, कितनी सत्य है पता नहीं, परंतु भक्ति मार्ग की ये सारी बातें हैं। वो हड्डियों में से ही विट्ठल 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 निकल रहा है, ऐसी बातें बताई गई है। तो प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, और कोई जप करने की जरूरत नहीं है, इसमें ही सब कुछ समाया है। प्रभु के सिमरन बिन से दूजा, बिन से दूजा अर्थात ये जो द्वैत है ये खत्म हो जाएगा। दो जो द्वंद है, कॉन्फ्लिक्ट है माइंड में, ये या ये, ये या वो, एक अर्थ ये भी है इसका, द्वैत खत्म हो जाना, अद्वैत अवस्था को प्राप्त होना। बाबा ने मुरलियों में कहा है सतयुग में कौन सा धर्म है? अद्वैत धर्म है। अभी जो है ना सब द्वैत है, खंड खंड बटे हुए है। यहां बाहर के धर्मों की बात छोड़ो, मन के अंदर की स्थिति में अद्वैत होगा, नॉन ड्वेलिज्म, दो नहीं एक। उधर के मार्ग में नहीं जाओगे, गलियों में, संडे के संडे मुरली थी ना, एक ही रास्ता है बस, उसी एक रास्तों पे चलोगे, फिर दो दो नहीं दिखेंगे। कोई बीमार होता है तो दो दो दिखते हैं ना, बाबा ने कहा था, वो नहीं होगा। तो ये खत्म होगा। प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, तीर्थों में जाना या तीर्थ स्थानों पर जाकर जो स्नान किया जाता है पवित्र शुद्धिकरण के लिए, वो सारा इस एक सिमरन में समाया हुआ है। सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा यही है, ये जो यात्रा बताई यहां पर, घर में जाना, नीचे आना, फिर नीचे आना, फिर संगम युग में आना, ये जो यात्रा है सबसे अच्छी यात्रा है। बाबा ने कहा ये यात्रा करते रहो, देखते रहो अपने आप को, अपनी प्यूरिटी को, आईने में देखो कितनी प्यूरिटी है, तुम जैसा प्योर और कोई भी नहीं था पूरे कल्प में, परंतु केवल स्मृति याद दिलाओ खुद को। तो सारे तीर्थों पे जाने का पुण्य याद में, संसार के तीर्थ। प्रभु के सिमरन दरगे मानी, अर्थात भगवान के दरबार में मान प्राप्त होगा। याद करोगे तो क्या होगा? भगवान के दरबार में मान प्राप्त होगा, अर्थात भगवान खूब मान देंगे, सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे, और सतयुग में उच्च पद। हमारी भाषा में प्रभु के सिमरन दरगे मानी, वहां पर दरगाह में, उस दरबार में मान मिलेगा। किससे? याद से, याद के चाट से। इसके लिए दो बार योग बहुत पावरफुल और शक्तिशाली होना चाहिए, अमृत वेले का और नुमाशाम का। नुमाशाम का 6 बजे से तैयारी चालू कर देनी है नुमाशाम के योग की, ऐसे नहीं कुछ कुछ कर। हाँ, सेवा जिसकी है वो दूसरी बात है, पर जिनकी सेवा नहीं है वो ऐसे ही व्यर्थ में कुछ कुछ ना करते रहे, हो सके तो 6 से ही चालू कर दो, बैठकर 6:30 से 7:30, ये बहुत जरूरी है। शाम का योग, सुबह का योग, रात्रि सोने से पहले थोड़ा सा योग बैठ के, बाकी तो दिन भर में है ही थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एकदम बुझ ना जाए याद की ज्योति। प्रभ के सिमरन दरगे मानी, तभी भगवान से सम्मान प्राप्त होगा, तभी बाप के दिल पर चढ़ोगे, नहीं तो नहीं। प्रभ के सिमरन होई सु भला, भला होने का एकमात्र मार्ग है सिमरन, याद, चाट, योग, तपस्या। प्रभ के सिमरन सुफल फला, सुफल फल प्राप्त होगा, जो भी पुरुषार्थ करोगे उसका अच्छा फल मिलेगा। और लास्ट में जो कहा, सी सिमरही जिन आप सिमराए, नानक तो के लागे ही पाए। सिमरन कर भी कौन सकता है, जिस पर उसकी कृपा हो। ग्रहचारी बैठी हुई हो, मुश्किल है, चाहता है व्यक्ति पुरुषार्थ करूं, परंतु हो नहीं पाता, कुछ ना कुछ बाधा आती रहती है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। चाहता है करूं, पता है करना चाहिए, विधि पता है, सब पता है, सारे साधन उपलब्ध है, फिर भी नहीं हो रहा है। यदि ऐसी अवस्था है, और इसके विपरीत दूसरी अवस्था है कि हमारा बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो रहा है, अमृत वेले अचानक आंख खुल जाती है अपने आप, अलार्म बाद में बजता है, नींद का नाम निशान नहीं, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव दिन भर, व्यर्थ खत्म, व्यर्थ जरा भी नहीं है, ना तो व्यर्थ बातों में इंटरेस्ट है, ना तो व्यर्थ बोलने में इंटरेस्ट है, सुनना तो बहुत दूर, उस व्यर्थ के संग्राम से बाहर आ गए। पुरुषार्थ कैसे करे, इसकी लगन अंदर लगी हुई है, अर्थात ये क्या है, प्रभु की कृपा। इसको कृपा ही समझना, क्योंकि संगम युग पर इस समय, आज के तारीख में यदि हम यज्ञ को देखें और ब्राह्मणों को देखें, कल क्या कहा बाबा ने, संडे पूरे ब्राह्मण परिवार से ये संस्कार खत्म हो जाना चाहिए, संडे की मुरली सुबह की, पूरे ब्राह्मण परिवार से ये अस्वच्छता का संस्कार खत्म हो जाना चाहिए, पूरे ब्राह्मण परिवार से ये दैहिक दृष्टि का संस्कार खत्म हो जाना चाहिए, पूरे ब्राह्मण परिवार से ये जो स्मृति की विस्मृति हो गई है इसका संस्कार खत्म हो जाना चाहिए, इसकी समाप्ति समारोह मनाओ। फिर क्या बना सकेंगे, संपन्न समारोह मना सकेंगे। पहले समाप्ति समारोह इसकी कहां से, संपूर्ण ब्राह्मण परिवार में। तो ऐसे ब्राह्मण परिवार में जिसमें बाबा कह रहे व्यर्थ अभी समाप्त नहीं हुआ है, यदि कोई आत्मा यह अनुभव करे कि सारा ध्यान पुरुषार्थ की तरफ है, ज्ञान की तरफ है, योग की तरफ है, तपस्या की तरफ है, व्यर्थ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये समझना कि ये क्या हो रही है, प्रभु कृपा। इसको हटने नहीं देना, अब थोड़ी उसकी कृपा हुई, अब उसमें बहुत आगे बढ़ना है उसकी कृपा में। और एक, बिना हनि कृपा मिले नहीं संता। महान पुरुषार्थियों का यदि संग प्राप्त हो जाए तो इसको भी प्रभु कृपा ही समझना। एक है संग, एक है कुसंग। श्रेष्ठ पुरुषार्थी के लिए कुसंग किसका है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी है उसके लिए कुसंग किन आत्माओं का है, वो आत्माएं जिनका रस घूमने फिरने में है, वो कुसंग है। वो आत्माएं जिनका रस सारा खान पान में है, वो कुसंग है। जो आत्माएं जिनका रस पॉलिटिक्स की चर्चा में है, मीडिया की चर्चा में है, मोबाइल की चर्चा में है, डिजिटल माया में खोए हुए है, ये सब क्या है, क्या कहा, क्रिकेट चल रहा है अभी, अच्छा अच्छा, क्रिकेट खेलते खेलते सुरेश भाई देखते देखते यदि शरीर छोड़ दिया तो किसकी याद में गए, गई आत्मा बताओ नहीं ब्राह्मण पूछते हैं ना, खेलना चाहिए कि देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, ये प्रश्न पूछा जाता है। अब एक प्रश्न है हमारा कि खेलते समय और शरीर छूट गया तो बाबा की याद में, हम क्रिकेट देख रहे हैं और शरीर छूट गया तो बाबा की याद में गए, वो एक्साइटमेंट, अरे इसने इतने रंग बनाए, उसने उतना, कितना एक्साइटेड व्यक्ति होता है वो देखते समय, क्या बाबा की याद में, हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता है। वो खींचता है, खींचता है वो। यदि ये प्रश्न है कि ब्राह्मणों को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, उसका हाँ खेलने की बात नहीं, यहां देखने की बात चल रही है। खेलना तो हम बहुत अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, पर उसका अपना टाइम। ऐसा नहीं कि 6:30 बजे सब लोग योग करने जा रहे हैं और हम अपना क्रिकेट खेलने चल रहे हैं। 6:30 बजे का टाइमिंग फिक्स किया है वॉलीबॉल का, बैडमिंटन का, ये योग का टाइम है। खेलना बहुत अच्छी चीज है, खेलने से हैप्पीनेस हार्मोन्स निर्माण होते हैं शरीर में, एनर्जी आती है, एनर्जेटिक फील होता है, परंतु किस समय किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। परंतु ये जो खेलना है इसमें मन जो है वो स्थिर नहीं रहता है, उसमें एक्साइटमेंट है, उसमें उत्तेजना है उसमें। यहां लक्ष्य है योगी के अंग अंग शीतल। क्या वो देही अभिमानी अवस्था में खेल रहे हो, देख रहे हो मैं आत्मा हूं, संडे की मुरली, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, विशेष आत्मा, ये सारे समान हैं पांचों, और फिर देख रहे हाँ अभी क्रिकेट मैच, अभी इसने छक्का मारा, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, क्या ये समान चल रहे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, अरे अरे क्या हुआ, ओ बॉल मिस हो गया, फिर एकदम से मैं एकदम शांत स्वरूप आत्मा हूं। आउट हो गया तो क्या आवश्यकता ही नहीं है, उस चक्र में जाना ही नहीं, टाइम वेस्ट है। संगम का एक एक सेकेंड इतना महत्वपूर्ण है, उस 10-15 मिनट में चिंतन हो सकता है ज्ञान का, सुमिरन हो सकता है, सिमरन हो सकता है, एक अव्यक्त मुरली पढ़ के हो सकती है, एक अव्यक्त मुरली का चिंतन हो सकता है, एकाग्र हो सकती है बुद्धि। कितनी एकाग्रता से पढ़ रहे हैं, ये जो मुरली हमने एक ही बार पढ़ी, ये जो अभी बताई, परंतु उसमें जब व्यक्ति पूरा फोकस हो जाता है तो तुरंत उसमें जो कुछ है वो सब खींच लेता है। एक है घंटों पढ़ते रहना पढ़ते रहना, एक बार पढ़ा फिर दूसरी बार, फिर रिवाइज किया, फिर कुछ किया, फिर कुछ किया, फिर ऐसा किया, फिर वैसा किया, एक ये है। परंतु हम अपनी बुद्धि को ऐसा ट्रेन करें कि वो तुरंत ज्ञान को पकड़े और ग्रहण करे, धारणा तुरंत हो जाए। नहीं तो कितनी बार भी पढ़ो, अभी बाबा आए, मुरली चली, क्या सुना, हाँ वही वो 5 स्वरूपों का अभ्यास बताया ना, बस वो तो पता ही है, बस यही था और क्या था, इधर जाओ उधर जाओ, फिर नीचे उतरो फिर इधर जाओ, वही चालू था, कुछ दूसरा था क्या, नहीं वही चालू था लास्ट तक। अरे दूसरा भी तो था, कितनी सारी बातें थी, एक्सपेरिमेंट था, किरणें फैलाने का था, मिरर था, सोचा इसके बारे में, दृष्टि वृत्ति कृति थी, कृति के बारे में कौन सी पॉइंट्स थी, खुशी की पॉइंट्स थी, दुखी लेने की पॉइंट्स थी, मैं किस बात में दुख लेता हूं, सेल्फ चेकिंग, चेक करो चेक करो चेक करो, कितनी बार बोला। तो ये टाइम जो है वो ये सब चीजों के लिए नहीं है, साइट सीइंग, टीवी, फूड, भोजन, क्या बना क्या बना क्या बना, किसी के थाली में कुछ नया दिखा, कहां से लाया, ये तो जनरल में था ही नहीं, कहां बना, चौक वाली, चौक वाटिका, दूसरे की थाली में कुछ भी ज्यादा दिखा कि कहां। एक बहन जी बोल रही थी, बाजू वाली बहन की थाली का जो गुलाब जामुन है मेरे से बड़ा था था तो इधर दोनों तरफ, पर उसकी कटोरी में जो था वो उसकी साइज बड़ी थी, तो हमारा ध्यान ये सब चीजों में यदि है तो मुरली के चिंतन अध्ययन मनन मंथन उसकी गहराई में जाना अनुभव करना ये सब चीजें कुछ नहीं होगी। तो इस मुरली से कुछ बातें जो निकाली है वो है सबसे पहला तो यात्रा, ये जो यात्रा बताई इसको बार बार करते रहना। फिर संडे की जो सुबह की मुरली है उसकी भी थोड़ी कुछ बातें ले लेते हैं। संपूर्ण प्यूरिटी, संपूर्ण स्वच्छता, उसमें दो चीजें थी, स्मृति की पवित्रता और दूसरी दृष्टि की पवित्रता। क्या बताया दृष्टि की पवित्रता के लिए? यदि यदि दैहिक दृष्टि जाती है तो क्या है वो? कितने महा? रेस्ट टू द पावर 3 महा, 3 महा महा महापाप। खाली कौन से बात के लिए दैहिक दृष्टि? किसको कहा बाबा ने ये अच्छा सेवाधारी है, इसके लिए 3 महा जोड़ दिए। आगे की तो बात ही छोड़ो, खाली इतना कहा कि ये अच्छा सेवाधारी है या अच्छी बहन है, टीचर शिक्षक, ये जो अच्छा है, अच्छाई किसकी? बाबा ने कहा अच्छाई है ऊंची स्मृति और ऊंची दृष्टि की। लगाओ झुकाओ बातें संकल्प बोल संपर्क महा महा महापाप, सुनहरी मृगमाया, पाप की लकीर को खींचते हो, ये रॉयल रूप का पाप है। पाप जैसे शब्द प्रयोग किए, रॉयल रूप का पाप, पाप की लकीर लंबी करते हो। एक विकार आता है तो उसके साथ साथ दूसरे भी आ जाते हैं, और एक चीज करते हो, वियोगी बनाते हो दूसरी आत्मा को। यदि मैं किसी की तरफ आकर्षित हूं और वो मेरी तरफ आकर्षित है तो क्या होगा? मैं किसी की तरफ आकर्षित हूं और वो मेरी तरफ आकर्षित है, या फिर मैं आकर्षित नहीं हूं परंतु वो मुझ में आकर्षित है, या फिर वो मुझसे आकर्षित नहीं है मैं उसमें आकर्षित हूं, दोनों इन सारी स्थितियों में क्या हो रहा है? या मैं उसको आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? उसको और मैं स्वयं दोनों ही भगवान से दूर जा रहे हैं, दोनों ही वियोगी हो रहे हैं। बाबा ने कहा ये वियोगी बनने का साधन है अव्यक्त महावाक्य संडे की मुरली, वियोगी बनने का साधन है ये। ट्रीटमेंट बीमारी, फिर से एक नई बीमारी, हर मुरली में एक दो बीमारी तो बाबा बताते ही है, और फिर उसका फिर डायग्नोसिस करते आना चाहिए बस, निदान, विकारों का निदान, विकारों का डायग्नोसिस होना चाहिए, ये मोह है, ये काम था, ये जो था ये लोभ था, ये अहंकार था, सेल्फ डायग्नोसिस। क्योंकि दूसरा हमारा डायग्नोसिस करे तो क्रोध, दूसरा आके कहे तुम में काम विकार दिख रहा है तो क्या करेंगे? फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। कोई दूसरा आके बता दे तुम्हारी दृष्टि वृत्ति बहुत चंचल है तो क्या वो धन्यवाद देंगे? बहुत अच्छा आपने बता दिया, क्या करेंगे? कोई कहे कि भाई तुम क्लास तो अच्छी कराते हो पर योग में हमेशा तुमको सोते हुए देखा है, अब पुरुषार्थ तो तुम बड़े करते हो, ग्रुप भी बनाते हो, पर योग में तो तुमको हमेशा सोते ही देखा, एक बार देखा होगा पर शब्द जो होगा हमेशा ही, क्योंकि ये कहते समय थोड़ा अच्छा लगता है। कोई रोज टाइम पर आता है, एक दिन लेट आया उसको कह देना तुम हमेशा ही लेट आते हो। तो इसके लिए दूसरों का छोड़ो, सेल्फ डायग्नोसिस करना है। इसके लिए क्या कहा? पवित्रता दर्पण में देखो कि मेरी परसेंटेज कितनी है, 90% है, 99% है, 50% है। लास्ट संडे की मुरली एक दिन भी यदि कोई अपवित्र है तो किस लिस्ट में जाएगा? अपवित्रता की लिस्ट में जाएगा, लाइन में जाएगा। दैहिक दृष्टि ट्रीटमेंट क्या बताया? कौन बताएगा? कल ही चली ना, कब मंडे, आज कौन सा वार है? परसों, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ट्रीटमेंट दैहिक दृष्टि, उसके लक्षण बता दिया है, उससे ये होगा, वियोगी हो जाओगे, दूसरे विकार आ जाएंगे, क्रोध महाभूत आ जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब ट्रीटमेंट क्या बताइए? वो तो पहली पॉइंट थी स्मृति की, और दो चीजें पवित्रता का आधार, वैसे तीन बताई पर विस्तार दो का ही किया, वृत्ति को छोड़ दिया बाबा ने। पहला विस्तार था स्मृति का, तो पांच स्मृतियां याद रखो। दूसरा था दृष्टि, दृष्टि में दैहिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी कौन है? शुद्ध पवित्र, वो सब पहले इसमें हो गया, अब दैहिक दृष्टि के बारे में बात चल रही है। ट्रीटमेंट क्या बताइए? दैहिक दृष्टि की ट्रीटमेंट क्या है? दैहिक दृष्टि यदि बीमारी है, दैहिक दृष्टि अर्थात ये भाई अच्छा है, ये बहन अच्छी है, ये है बीमारी। मां मां पाप है, सुनहरी मृग माया है, ये सब है। ट्रीटमेंट क्या बताइए? ये सब बाबा का, मुरली का बताओ, संडे की वो भी। वो साथी कुमारों से मुलाकात है। ये बाप के सेवाधारी है, ये बाप के शिक्षक है, ये त्यागी तपस्वी आत्माएं हैं ब्राह्मण परिवार में। स्मृति को लाओ, बहस नहीं करो, है या नहीं है इस बहस में नहीं जाओ, स्पष्टीकरण नहीं देना है। स्पष्टीकरण जब देते हो तो स्पष्टीकरण किसका देते हो? अपने पाप का स्पष्टीकरण देते हो, फुल स्टॉप लगाओ, ये सारी ट्रीटमेंट है। स्पष्टीकरण नहीं देना, विकसित नहीं करना, फुल स्टॉप लगाना, त्यागी तपस्वी समझना, इशारे से इशारे को समाप्त करना, नहीं तो जिसने इशारा दिया उसको दुश्मन नहीं बना लेना। आप इसने इशारा दिया तो वो उसको वो दुश्मन जैसा दिखता है। इशारे को इशारे से समाप्त कर देना, ये है ट्रीटमेंट। लगाव और झुकाव, उसको समाप्त कर देना, यह है ट्रीटमेंट। फैमिलियरिटी जो है उसको समाप्त कर देना, यह है ट्रीटमेंट। कबीरा खड़ा बाजार में, ऐसी स्थिति, किसी से दोस्ती नहीं ना किसी से वैर, सब समान है, खाली सबकी खैर, यह स्थिति। ज्यादा किसी से लगाव नहीं, क्योंकि जिससे ज्यादा लगाव होगा उसके प्रति एक दिन घृणा भी उत्पन्न होती है, फिर उसके प्रति सब जानने लगोगे, फिर घृणा उत्पन्न होती है, फिर दूर जाते फिर समीप आते, फिर दूर जाते फिर समीप आते, खेल चालू रहता है, कभी इधर डिस्टर्बेंस कभी उधर डिस्टर्बेंस। इसके लिए सबसे सुखी वो है जो अनासक्त है, इस परिवार में भी। दृष्टि किसके लिए बोली बाबा ने? लौकिक आत्मा है, अलौकिक आत्मा है, लौकिक स्मृति में रहने वाली आत्मा है, तीन प्रकार की आत्मा है। इन सब के प्रति क्या समझो? मैं पूज्य आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, और इनको पूज्य बनाना है, जो लौकिक वाली आत्मा है, यह स्मृति रहे, यह भी एक ट्रीटमेंट है। तो यह सारी ट्रीटमेंट है उसकी, स्मृति को जगाना, श्रेष्ठ स्मृतियों को जगाना। और कोई पॉइंट थी संडे की मुरली में? जिसने जो जो चिंतन किया एक दो बातें बताइए। जैसे वो ब्राह्मणों की दो निशानी, एक है जनेऊ, एक है चोटी, और तीसरी और चौथी और पांचवी और छठवी और सातवीं, सोचो वो ब्राह्मण क्या क्या करते हैं? कथा सुनाते हैं। मैंने आज कितनों को कथा सुनाई? कथा सुनाना अर्थात ज्ञान की चर्चा करना, खाली वो 7 डेज का कोर्स कराना अर्थात कथा सुनाना नहीं, ज्ञान की चर्चा कितनी की आज सारे दिन में, सुबह से लेके अमृत वेले के बाद से अब तक, कितने व्यक्तियों के साथ बैठकर ज्ञान की चर्चा की, कि आज बाबा ने मुरली में ये कहा, ऐसा क्यों कहा? कल बाबा ने मुरली में ये कहा था, क्या ऐसा हो सकता है? आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छा अच्छा किया आपने जो घर बार छोड़ा, पर हम आपको बताते हैं दो प्रकार के सन्यास, एक है घर बार छोड़ने वाला संस्कार, एक है घर बार में रहकर किया हुआ संस्कार सन्यास। ये ऐसा क्यों कहा? क्या ऐसा प्रैक्टिकल में कर सकते हैं अगर कोई सन्यासी आया तो? ये है ज्ञान चर्चा। ब्राह्मण अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक है मंदिर के पुजारी वो ब्राह्मण होते हैं, एक कुछ ब्राह्मण होते हैं जो अमात्य बन जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं राजा के पास, कुछ ब्राह्मण होते हैं जो घर घर में जाकर कथाएं करते हैं, कुछ ये सारे श्राद्ध कराने वाले, पूजा पाठ कराने वाले, शादी में जाने वाले या फिर ये करने वाले, अलग अलग चीजें करते रहते हैं वो। तो वो सारे उनके उनके पास क्या होते हैं, बाबा मुरली में क्या कहते हैं, यहाँ के कख में कच्छ, वो किताब पोती पीती रहती है, हमारी जेब में कुछ है कि नहीं अपॉइंटमेंट्स, मुरली की चिट्ठा पर्चा, कुछ नोट्स, कुछ लिखी हुई अच्छी बातें। एक प्रयोग बहुत अच्छा जो किया जा सकता है ज्ञान सरोवर में, कहीं पर भी जाके बैठना और जो स्लोगन यहां कहीं लिखे हुए हैं एक ही स्लोगन ले लेना बस, इंद्रियों का आकर्षण ही सभी दुखों का कारण है, ठीक है, उठाया, अब चलो आगे। और उसके पीछे में सोचो इंद्रियों का आकर्षण क्या है, क्यों है? इंद्रिय धोखा ना दे, कुमार अर्थात साक्षी, साक्षी अर्थात कर्म से भी साक्षी और इंद्रियों से भी साक्षी, शरीर के संबंध में आना अर्थात कौन बताएगा, डैश डैश डैश, शरीर के संबंध में आना अर्थात डैश डैश डैश। हाँ नहीं, करीर कर्म शारीरिक संबंध में आना अर्थात डैश डैश डैश। प्रभाकर भाई, अमित भाई, आंखों का धोखा खाना, आंखों का धोखा खाना, एक स्लोगन पढ़ लिया, पढ़ा बहुत है, सुना बहुत है, लिखा बहुत है, चिंतन करना बाकी रह गया है। ऐसी कोई पॉइंट है जो पता नहीं ब्राह्मणों को? कोई पॉइंट शायद ही कोई होगी, सब पता है, सब पता है, जो मुरली चलने वाली उसमें बाबा क्या बताने वाले वो भी पता है। एक चीज जो रह गई है बेंडिंग वर्क, वो है चिंतन, मनन, अध्ययन। अपने अध्ययन को बढ़ाओ। रात्रि के लिए हमारे पास सोते समय कोई किताब रखी हो, दोपहर में कोई अलग किताब रखी हो, एक ही समय हमारी अलग अलग सीरीज चालू हो। रात में सोते समय हमें वही पढ़ना है, स्पार्क से कोई किताब ले लो, तकिया के नीचे रखो, ये सीरीज एक चालू करो, पश्चाताप ये एक सीरीज है छोटी सी किताब, टीचर्स सीरीज, श्रीमत सीरीज, बहुत सारी किताबें है ना, अलग अलग है, छोटी छोटी ले लो और अपनी एक पर्सनल सीरीज चालू करनी है, वो किताब तकिया के नीचे रहेगी, रात को सोते समय एक पैराग्राफ पढ़ के ही सोएंगे। पूरा मुरली पढ़ने का संकल्प करोगे तो वो बहुत सारा हेवी डोज होता है, थोड़ा थोड़ा, वो एक सीरीज, दोपहर में एक दूसरी सीरीज, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें रख देना ताकि बुद्धि उसमें बिजी रहे। बिजी रहना ही एक यहां पर ये, जैसे ही हम बिजी नहीं रहते माया अटैक, व्यर्थ, कोई ना कोई मिल जाता है और व्यर्थ की बातें चालू हो जाती है, इसके लिए स्टॉप, ये सारा वेस्ट। भोजन गए, खाए भोजन और आ गए मौन में, किसी को दिखाना है जो भी दिखा दिया, आ गए वापस अपनी सेवाओं में, वापस अपनी तपस्या में, इधर जाऊं उधर जाऊं ये करूं वो करूं, बैठे बैठे और बातें चालू है, सुनहरी टोली दादी जानकी कहती थी, बैठे हैं, आ जाओ तुम भी आओ बैठो और चर्चा करेंगे, यहां क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है, वो सेंटर में क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है, उस गांव में क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, तुमको क्या करना है, काम से काम रखना। यहाँ किस लिए आए थे? तपस्या करने के लिए। वो छोड़कर बाकी करने लगे तो क्या मतलब है? टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना। एक एक दिन कितना महत्वपूर्ण है, कितनी पावरफुल मुरली है, कितनी एक एक पॉइंट उसकी कैसी कैसी है, कितना हमने उसको पढ़ा, कितनी बार पढ़ा, कितना उसको ग्रहण किया, समझा, याद रखा। तो ये सारी चीजें करनी है, ठीक है? तो आगे के लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं आपको। ये जो 20 तारीख है आने वाले, ये इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है। एक काम दे रहे हैं, खुशी इस ब्राह्मण जीवन में वो पॉइंट्स लिख के लानी है जो हमारी खुशी को गायब करते हैं। ऐसी 21 बातें लिखनी है सबको, खुशी को खत्म कर देती है वो पॉइंट्स लिखनी है। होमवर्क, 21 थिंग्स दैट मेक योर हैप्पीनेस डिसअपियर। वो सारी बातें जिससे हमारी खुशी नष्ट हो जाती है, ये एक होमवर्क। और दूसरा होमवर्क है ऐसी 21 बातें जो खुशी को बढ़ा देती है। और जो इसको एकदम पर्सनल लिखना है, जनरल जैसे ये कोई आर्टिकल या मैगजीन में नहीं डाल रहे जिसमें बड़ा इसमें खुश रहने के लिए जीवन में ऐसा करना जरूरी है, वो वाली भाषा नहीं चाहिए। मैं, मेरे लिए ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे करनी है जिससे अभी जो लेवल है खुशी का वो बढ़ जाए, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो मैं कर रहा हूं या हो रही है या मैं देखता हूं दूसरे कर रहे हैं जिनकी वजह से खुशी नष्ट हो सकती है। उसमें कुछ भी हो सकता है, कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हो किसी को सब कुछ मिल रहा है, हमको मिल ही नहीं रहा है। हम जा रहे हैं टोली लेने तो टोली खत्म हो गई, हम जा रहे हैं हमको टोली मिली तो आम मिला वो भी छोटा, बाकी सबको बड़ा मिल गया। हम सोचते देखो यहां पर भी मेरे साथ ही ऐसा होता है, हम गए भोजन करने तो तब तक खत्म हो गया, वो जो अच्छी वाली सब्जी थी वही खत्म हो गई। और फिर कंपैरिजन, इसको सब मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, ये जबरा ज्यादा अच्छा है, इसका ड्यूटी थोड़ी अच्छी है, इसकी टाइमिंग बहुत अच्छा है उसका ड्यूटी का, और हमको देखो कभी भी बुला लेते। पुरुषार्थ का जो टाइम है क्लास का वही टाइम पे सेवा है। मन में कुछ ना कुछ है सूक्ष्म, वो ढूंढना है और अपने ना खुशी दिलाने वाले जो कारण है, खुशी को गुम करने वाले जो कारण है, उनकी एक लिस्ट बनाना है और जो खुशी ला सकते हैं वो कारण बनाने है। और इन पॉइंट्स का आधार होगा आने वाली सारी मुरलियां, अभी आने वाली जो भी मुरलियां होगी वो सारी मुरलियां, उनमें से रोज थोड़े थोड़े पॉइंट्स निकालना है, कुछ चिंतन करके निकालना है, कुछ उसमें से निकालना है, ठीक है? ये एक होमवर्क। और जो अगला संडे होगा 18 तारीख, ठीक है, हम यहां पर आएंगे 20 या 21 को, सीधा 21 तारीख को। तो संडे की जो मुरली होगी, ठीक है, 18, 19, 20 तीन दिन तक इस मुरली का स्टडी करना है सबको, 18, 19, 20 संडे, मंडे, ट्यूसडे, ताकि जब हम वेनसडे को यहां आएंगे तो उस मुरली को यहां हम रिवाइज करेंगे इस सुखमणि साहिब के साथ ही, ठीक है? तो तीन दिन तक वो मुरली रिवाइज करनी है 18 तारीख को जो चलेगी, पूरा 18 संडे, पूरा मंडे, ट्यूसडे। और वो मुरली ऐसी रिवाइज करनी है कि वो हमको याद हो जाए, पता हो जाए पूरी, इतनी इतनी बार उसको पढ़ लिया है कि वो कहां क्या है वो पता हो गया है। क्योंकि जब हमको याद है तो ही तो हम उसको अप्लाई कर सकेंगे, हमको याद ही नहीं तो अप्लाई कहां से करेंगे। और जब परिस्थितियां कोई नहीं है, अभी शांति है, तभी हमको याद नहीं, तो जब परिस्थिति आएगी तब कहां से याद करेंगे? जब हलचल होगा तब मुरली पढ़ेंगे, अरे ये करना है अभी क्या करूं, तब तो कुछ भी नहीं होगा। अभी तो शांति है, स्थिरता है, सेवा की मुरली पढ़ रही जो भी है उसको ये लक्ष्य से भी नहीं करना है कि मुझे याद रखना है, इस लक्ष्य से करना है मुझे इसे समझना है ये क्या है। एक पैराग्राफ पढ़ना और रुको, स्टॉप। और हो सके तो जैसे हमारा पांडव भवन का ग्रुप है वो हम मंडे से मुरली पढ़ना चालू करते हैं, संडे की, आने वाले संडे की मुरली मंडे से पढ़ना चालू होती है, थोड़ा 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 थोड़ा, एक पैराग्राफ पढ़ लिया छोड़ दिया, एक पैराग्राफ पढ़ा छोड़ दिया, ताकि संडे आने तक वो थोड़ा सा बुद्धि में ऐसा लगता है अपनी सी, नहीं तो पराई सी लगती है। सुबह सुन ली क्लास में बैठ के, शाम तक पता नहीं टाइम नहीं मिला, पढ़ाई नहीं और हाथ से गई, और सुबह दूसरा माल आ गया तरावती, फिर तो ये दूसरा पिछला को, ऐसा कोई है जो कल की मुरली जो पढ़ता है? बिल्कुल कोई होगा नहीं। ब्राह्मण कोई आके क्या कहता है आज की मुरली है क्या? कोई ये क्या कहता है कि कल वाली मुरली है क्या? बिल्कुल नहीं, कल वाली को तो बिल्कुल देखते ही नहीं, जैसे हमारा काम का ही नहीं है, आज वाली चाहिए। इसलिए थोड़ा सा पहले से उसको पढ़ के पढ़ना चालू करना है, वाक्यों को, महावाक्यों को, और जब हम आएंगे फिर इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, ओम शांति।